हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शाम सलाम, कैसे हैं आप सब। और स्टूडियो में हाजिर है आपकी अपनी आरजे जमी, आज के आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गोधुली में, जिसमें हमारे बीच गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर शुभन मिश्रा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं एम्स इंटरनेशनल स्कूल की। तो आज हमारे बीच मैम मौजूद हैं और मैम से हमें ढेरों सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। सो आइए, मैम की तारीफ हम मैम से ही जानते हैं।
हाँ नमस्कार, जैसा कि आप लोग मेरा परिचय दे ही चुके हैं, नाम मेरा सुमन है। मैं बतौर एम्स इंटरनेशनल स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। कुछ बहुत बड़ा तो मेरा परिचय नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, आप लोगों के ही बीच में। गोंडा ज़िले से मैं अपना ताल्लुक रखती हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं परवरिश हुई और यहीं पर अपनी सेवाएँ दे रही हूँ
जी। थैंक यू सो मच मैम। और आगे हम किसी भी क्वेश्चन पे आए उससे पहले मोस्ट वेलकम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसे कि अभी आपने अपने बारे में हमें बताया कि आप गोंडा की ही रहने वाली हैं और आगे अपनी सेवाएं भी गोंडा को ही दे रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात मुझे आपकी लगी। मैम आपकी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक कम्युनिटी रेडियो है। सो गोंडा की किस फैमिली से आज हम किसकी मुलाकात करा रहे हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, माता पिता क्या करते थे, कैसे कैसे आपकी एजुकेशन रही, हमें थोड़ा डिटेल में बताइएगा।
बहुत साधारण परिवार से हूँ, मेरे पिताजी सेना में थे जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपके गोंडा से थोड़ी सी दूरी पर हमारा गांव है। परिवार में हम 6 बहन हैं, सभी लोग बहुत ही साधारण जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत ही साधारण बैकग्राउंड है। परिवार में माता जी हैं, भाई साहब हैं, सभी लोग जो है अपने अपने कार्यों में, किसान परिवार है, अभी फिलहाल तो सभी लोग किसानी में ही जुटे हैं। मैं अपनी सेवाएं जो है वो एजुकेशन की तरफ दे रही हूँ। एजुकेशन में मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। परिवार से भी बहुत मोटिवेशन हमेशा रहा है कि करना है हमें कुछ, अब क्या करना है ये उस समय तो डिसाइड नहीं था, लेकिन आज हम सभी लोग जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं कि लड़कियों की एजुकेशन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। हमारे परिवार के सभी लोग मेरे साथ आज मेरा साथ दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम हमें लगता है कि एजुकेशन में काम करना सबसे अच्छा काम है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य और भी हमारे जो साथी लोग हैं वो सब हमारा साथ दे रहे हैं और हम लोग इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे विद्यालय से प्रत्येक वर्ष बहुत सारे बच्चे जो है नीट क्वालिफाई करते हैं और कुछ बच्चे जो है IIT क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी जो बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों में, जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उनका चयन हो रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है 4 से 6 बच्चे हमारे विद्यालय के जो है नीट और IIT क्वालिफाई करते ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं और गोंडा जैसे छोटी जगह पर इन सब चीज़ों पर काम करना वास्तव में गौरव का अनुभव कराता है कि परिवार साधारण, अति साधारण परिवार है हमारा, लेकिन हम सभी ने इस महत्व को समझा कि अगर जीवन में कुछ करना है तो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है
जी,
जिसको हम सभी लोग मिलकर के बढ़ा रहे हैं
जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे डिपार्टमेंट को चुना जो वाकई में ऐसा लगता है, लगता ही नहीं है, वाकई में गोंडा में आज एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि गोंडा में लड़कियों की एजुकेशन के लिए आप बहुत कुछ करना चाहती थी और आप कर भी रही हैं आज। सो मैम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की ही हम बात कर रहे थे तो आपकी फैमिली पे ही आते हैं। आप 6 बहनें थीं जैसा कि अभी आपने बताया। कई बार मैम ऐसा होता है कि आपने बताया कि आपका जो फैमिली था वो थोड़ा किसानी परिवार था, सो कभी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि अगर 6 बहनें हैं उसमें से कोई पेंसिल मांग रहा है, कोई बुक मांग रहा है, कोई किताब किसी के लिए है, तो किसी को क्या ये नहीं बोला जाता होगा कि आज नहीं कल दिला देंगे? उन सारी चीज़ों को लेकर भी आपकी फैमिली ने हर एक पल में आपको कैसे मोटिवेट किया एजुकेशन को लेकर?
स्वाभाविक सी बात है कि जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनकी सीमाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए अति आवश्यक आवश्यकताएं क्या है। परिवार में जब सदस्य ज़्यादा होते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि जब चादर छोटी होती है तो उसके हिसाब से हमें अपना पैर फैलाना चाहिए जैसा कि हम सभी लोग इस बात को समझते हैं। तो नो डाउट ये दिक्कतें तो आई कि जरूरत हमारी, हम सभी को जरूरत है पेंसिल की, लेकिन ठीक है अगर एक पेंसिल भी होगी तो भी पहले हम लिख लेंगे फिर वो लिख लेंगे, ऐसा करके मैनेज किया गया क्योंकि हम सभी समझदार थे और आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करते थे कि अगर आवश्यकताएं तो बहुत हैं लेकिन जो हमारी सीमित संसाधन है उसका ध्यान रखते हुए हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी करना था। तो इसका हम लोगों ने मिलजुल करके ध्यान रखा और चीज़ों को मैनेज किया।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम, क्योंकि उस टाइम की बात हो रही है जब हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम 6 बहनें हैं, आज हम एक जिद्दीपन होता है हमारे अंदर, सभी के अंदर होता है कि नहीं मुझे भी नई पेंसिल चाहिए। उस दौर में भी आपने चीज़ों को समझते हुए, 6 बहनें थी आप सभी ने एजुकेशन को किया और सभी आज आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। नारी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं और आपसे हमें इतनी सारी प्रेरणाएँ मिल रही हैं। सो मैम, आपकी फैमिली ने तरीके से, आपने बताया कि आपका एक किसान परिवार था, फिर भी उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और एजुकेशन के फील्ड में आपको आगे बढ़ाने का सोचा। कोई ऐसा छोटा सा किस्सा कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि किस तरीके से आपके फादर और मदर ने आपको एजुकेशन के लिए, आपको 6 बहनें थी, सभी को मोटिवेट किया एजुकेशन को लेकर।
देखिए माँ पिताजी, हर व्यक्ति के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलादें आगे बढ़े, जीवन में जो है सुख समृद्धि को हासिल करें, नाम कमाएं। इसी तरीके प्रकार से हमारे माँ बाप भी चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें। अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है लेकिन अपने साथ साथ अगर समाज को जोड़ा जाए तो उसकी खुशी अलग ही होती है। मेरी माँ का भी ये मानना रहा है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे तो हमारा ख्याल ऊपर वाला अपने आप रखता है। इसी भावना और इसी प्रेरणा के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। माँ से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं तो उन्हीं चीज़ों को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं।
जी मैम, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आपकी माँ की जो ये शिक्षा थी कि करने को तो हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन हम जब खुद की खुशियों के साथ जब कुछ समाज को देने लगते हैं या समाज के लिए कुछ करके फिर उससे जो हमसे मिल पाता है वो हम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपकी माता जी आपको सिखाती हैं। और वाकई में आज हमें आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है कि कैसे आपके स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और समाज के बच्चों को आप कितना एजुकेटेड कर रही हैं और कितना एजुकेशन में आगे लेकर जा रही हैं। क्योंकि मैम बात हो रही है एजुकेशन की, सो हम आपके फिर से आपके बचपन की तरफ ही लौटना चाहेंगे। एजुकेशन में आप हालांकि बहुत अच्छी रही होंगे जिसका रिजल्ट हमें आज दिख भी रहा है। एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अगर मैम कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स या अदर हॉबीज की बात करें तो आपको उनमें क्या क्या पसंद था?
देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो चाहे जिस गेम में डाल दिया जाता था मैं बेहतर करती थी, स्कॉलर भी अच्छी थी, लेकिन आज के समय के लिए अगर मैं देखूं तो बच्चों को परिवार के साथ, और जैसा कि अभी आपने, चलिए मैं इस बिंदु पर पहले बात कर लेती हूँ, आपने कहा कि मेरे, मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहे जिस भी गेम में आती थी अच्छा करती थी, मैंने खो खो बहुत अच्छा खेला है, स्कूल के लेवल पर ही मैंने खेला है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा करती थी
जी।
अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा क्या करना, लेकिन चीज़ें चाहे जिस गेम में हमको डाला जाता था वहाँ पर मुझे जो है कैप्टनशिप मिलती थी और हमारी टीम जीतती भी थी
जी। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैम, ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात
जी।
क्या कभी साहित्य पढ़ना लिखना या फिर ड्राइंग में इंटरेस्ट, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब कभी हो रहा मैम?
मैं थोड़ा सा शांत स्वभाव की थी तो मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही आगे चल करके, तो मैं बहुत ही शांत नेचर की थी तो मुझे ये सब चीजें ऐसा लगता था उस समय में कि ये सब चीजें जो है मेरे लिए नहीं बनी है। तो वो चीज मैं आज भी मानती हूँ, मैं इन सब चीजों में जो है वो थोड़ा सा पीछे हूँ।
चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आपको मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैथ जिनको इंटरेस्ट होता है उन स्टूडेंट्स के अंदर मैम एक चीज़ ये पाई जाती है कि आप उनका बैग अगर चेक कर लेंगी तो एक डायरी आपको ज़रूर मिलेगी जिसमें पूरे फॉर्मूले लिखे होते थे। तो ये हमारे टीचर ने हमको सिखाया था जब हमने 12th में मैथ लिया था, और हमने ये काम किया भी था, और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहा कि हमें वो पूरी बुक उलट के नहीं देखने पड़ते थे फॉर्मूले, वो एक छोटे से पॉकेट में डायरी में मिल जाता था। तो ये आपने कभी किया जब आपको मैथ में इंटरेस्ट रहा होगा?
स्वाभाविक सी तो बात है कि अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज़ हम अपने आसपास रखना चाहते हैं, तो जो चीज़ें हमें टफ लगती है, कठिन लगती है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को कभी हाथ में लिख लेना, कभी किसी पन्ने में लिख लेना, कभी किसी कॉपी में लिख लेना, कभी किसी डायरी में लिख लेना, ये तो हमारे आसपास जो है वो चलता ही रहता है स्वाभाविक सी तौर पर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की हुई है।
ओके, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि स्पोर्ट्स में आपको इतनी दिलचस्पी थी, मैथ में आपको इतनी दिलचस्पी थी, तो क्या ये दोनों फील्ड को लेकर कभी आगे बढ़ने का आपने नहीं सोचा, या बचपन से ही सोच रखा था आपने कि मैं टीचर बनूंगी, ऐसा कुछ बचपन से आपका सपना क्या था?
नहीं, बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था, बचपन से तो ये था कि पिताजी डिफेंस में थे तो आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत जो है डिफेंस वाला था, तो ये लगता था कि इस फील्ड में जाया जाएगा। समय के साथ वो जो एक इसको देखा तो उससे इंटरेस्ट हो गया, दूसरी चीज़ को देखा ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस फील्ड में जाना है, तो जो ये 10th तक का पीरियड होता है हम लोगों का, वो जिस चीज़ को देखता उससे प्रभावित होने लगता है, कुछ सर्टन नहीं होता है। मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं था कि ये चीज़ करनी है, लेकिन 10th के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनती गई, 12th करते करते ये हो गया नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करना है।
ओके, तो ये तो बहुत,
क्योंकि एजुकेशन ही सबको जोड़ सकता है, और एजुकेशन के माध्यम से ही हम किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं।
जी जी, वाकई में बहुत ही प्यारी बात मैम आपने कही कि एजुकेशन ही सबको जोड़कर रखता है, बहुत ही अच्छी बात मैम आपने कही। और इसी की तरफ हम फिर से आगे बढ़ते हैं। मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि एजुकेशन सबको जोड़ कर रखता है, और आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि उसने आपको एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने का सोचा, सो आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या आपकी तो फैमिली सपोर्टिव थी, बट सपोज दैट कि अगर वहीं कोई एक ऐसी बच्ची है जिसकी फैमिली भी एजुकेशन को लेकर नहीं सपोर्ट कर रही है, तो उन फैमिलीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या आपने अपने नज़रिए से कितना देखा है कि बॉयज के लिए एजुकेशन आसान होता है लेकिन लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है, तो इस चीज को आपने अपने नजरिए से क्या देखा है, और प्लीज अपने शब्दों में हमें बताएं।
देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंजेस हमारे सामने नहीं आए, मेरे सामने भी बहुत तरह के चैलेंजेस आए हैं
जी।
और महिलाओं के सामने स्वाभाविक सी बात है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत सोच समझ करके देखना और संभालना पड़ता है
जी।
कुछ परिवारों के साथ आज भी है जो इसके महत्व को नहीं समझते हैं, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं
जी।
तो इसलिए वो सोचते होंगे कि हाँ, लड़कियों का एजुकेटेड होना जरूरी उतना नहीं है। मुझे लगता है कि हर परिवार को ये चाहिए कि जो एजुकेशन है वो सबको कराई जाए। हर माँ बाप से मेरा ये अनुरोध है, हर भाई से अनुरोध है, परिवार के हर बड़े से मेरा ये अनुरोध है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, और उसको मुहैया कराना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है
जी।
अगर ठीक है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी कारणवश आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन तो कराना बहुत ही स्वाभाविक है। आज नहीं, हमेशा इसकी आवश्यकता रही है, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि शिक्षा के बिना तो सब कुछ अधूरा है
जी।
हम किसी भी फील्ड में, इवन जीवन जीने के लिए भी हमें शिक्षित होना जरूरी है। अगर हम साधारण जीवन भी जीना चाहते हैं तो भी शिक्षा के बगैर अगर हम उसकी कल्पना करते तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है
जी। बहुत ही अच्छी बात मैम आपने कही कि अगर हमें सिर्फ अपने लाइफ में कुछ करने के लिए ही एजुकेशन नहीं लेना होता है, हमें अगर एक अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ स्टाइल भी जीना है, तो उसके लिए हमें एजुकेटेड होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई, और हमारे लिसनर भी जो सुन रहे होंगे वो बिल्कुल आपकी बातों से बहुत ही अच्छी शिक्षा आज उनको मिल रही होगी। अभी आपने बात की मैम कि एजुकेशन हर घर के हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, हमारे मोदी जी का भी ये सपना है, और कहीं ना कहीं वो आज हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अब पुराने जमाने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, चीज़ें बहुत बदली भी हैं, बट आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि हर बच्चा शिक्षित तो हो रहा है बट कहीं ना कहीं क्वालिटी डैमेज हो रही है एजुकेशन की। अब वो क्वालिटी नहीं रह गई, या यूं कहूं कि पहले के जमाने के जो लोग ट्वेल्थ पढ़ के टीचर हो जाते थे और उनको जितनी नॉलेज होती थी उतनी नॉलेज हमें आज ग्रेजुएशन और पीएचडी करके भी नहीं हो पाती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसका जो कमी आज है, मुझे लगता है कि वो शिक्षा की कमी कम है, संस्कारों की कमी ज्यादा है। शिक्षा तो हम दे रहे हैं लेकिन किताब की सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार से दूर कर रहे हैं, हम संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर मेरे परिवार में चार बच्चे हैं तो स्कूल के बाद का जो उनका समय होना चाहिए वो मेरे साथ बीतना चाहिए, मेरे माँ बाप के साथ बीतना चाहिए, दादा दादी नाना नानी के साथ बीतना चाहिए, परिवार के अन्य बड़े सदस्यों के साथ बीतना चाहिए, वो आज हो नहीं रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर संस्कार कहाँ से आता है? संस्कार हमें हमारे बड़ों से मिलता है, हमारे समाज के लोगों से मिलता है, हमारे पड़ोस के रहने वाले लोगों से मिलता है। तो हमें, अगर हम इनसे दूर होते चले जाएंगे तो फिर हमारी सिर्फ शिक्षा जो है वो, मुझे लगता है कि कहीं शिक्षा अपने पूरी भूमिका नहीं निभा पाएगी। शिक्षा में इन चीज़ों को, वैसे ऑलरेडी हैं ये सारी चीज़ें लेकिन हम उस पर ध्यान कम देते हैं, या आज का जो जीवन जीने की शैली है उसमें ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं इस मामले में। तो संस्कार देने के लिए मुझे लगता है कि बच्चों का समय हमारे साथ बीतना चाहिए। बच्चे मोबाइल के साथ वर्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें दूरी बनानी चाहिए बच्चों की। वो बच्चों की समस्या नहीं है, आज हर व्यक्ति की समस्या है कि मोबाइल ने हमारा अधिकांश समय ले लिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हम एक दूसरे के साथ चर्चा करके जो ज्ञान हम हासिल करते हैं, वो मोबाइल से ज्ञान तो हासिल कौन करेगा जो समझेगा कि इस ज्ञान का महत्व है। बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है, कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट नहीं देखना है। वो उन कंटेंट्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं जो उनको आकर्षित करता है, वो उस कंटेंट पर कम जा पाते हैं जो उनके लिए नॉलेजेबल होता है, जो उनके लिए उनके भविष्य के लिए बेहतर होता है। तो हमें लगता है कि हमें अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहिए। बच्चों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपना अधिकांश समय अपने बड़ों के साथ बिताएं।
जी, आपने बहुत ही प्यारा जो विषय है, मैं ये कहूँगी आपने छेड़ा है, और इस पे आगे वार्ता हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज के जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं रिश्तों की जो समझ है वो कहीं ना कहीं उससे वो बहुत ही परे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, संस्कारों का बहुत अभाव दिख रहा है। इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, तो एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, मिलते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो माई डियर लिसनर, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
क्या आप भी हैं परेशान पेशाब संबंधी बीमारी से? अगर हाँ तो आप छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि अब अपने गोंडा शहर में यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर फराज नसीम के द्वारा यूरोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध है हर सोमवार से शुक्रवार, जिसमें किडनी, पेशाब नली एवं पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन विधि से ऑपरेशन, प्रोस्टेट ग्रंथि का दूरबीन व लेजर विधि से ऑपरेशन, डायलिसिस मरीजों में एवी फेस्टुला बनवाने व पेशाब नली में सिकुड़न का ऑपरेशन, बच्चे एवं महिलाओं में पेशाब संबंधी व यूरोलॉजी की कैंसर संबंधी समस्याओं का इलाज, सभी प्रकार की यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी दूरबीन द्वारा करने की सुविधा उपलब्ध है, व साथ ही साथ इमरजेंसी ऑपरेशन एवं जनरल सर्जरी की सेवाएं हर रोज उपलब्ध है। पता है लाइफलाइन हॉस्पिटल, महाराजगंज, करबला रोड, राजा मोहल्ला, गोंडा। मोबाइल नंबर 9698 418 952 और 6307 542 025। प्योर वेजिटेरियन खाने की बस एक जगह, उत्सव रेस्टोरेंट शर्मा होटल गोंडा, जहां मिलेगा टेस्टी इंडियन, चाइनीज और साउथ इंडियन फूड, साथ ही साथ फैमिली के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट और पार्किंग की भी सुविधा। कई सालों का साथ शर्मा होटल का भरोसा। पता है उत्सव रेस्टोरेंट शर्मा होटल, नियर बस स्टैंड, बहराइच रोड, गोंडा।
Yeah. क्यों वो शाम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। जे कुछ भी नहीं याद तेनु, आ जा भी मार दे मैनु, मेरा की दसने पसो क्यों होया मेरे कोलों दूर। पहली बारी हमने पिया था पिला के वो जाम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए। हाल हमारा तेरे बिन ओ यारा, हाल है अपना ऐसे, निकल कर पानी से मछली कोई रे, तड़पती होती है जैसे। वे रात तो रात जिंदगी च कट दे, हाय रब करे तेनु भी कोई छड़ दे, मेरा दस दे कसूर क्यों होया मेरे कोलों दूर। है तेरे ही करके दुनिया में सारी हम बदनाम भी भूल गए वो दिन क्यों रे जानी, क्यों वो शाम भी भूल गए।
दिन तेरे रो रो के काटे अपनी जिंदगी सारी, बस एक हम ही भूले नहीं है आई, तुम्हें भी न याद हमारी। तेरे बिना हम कैसे हैं क्या बताए, हाँ हमने जो भूला कभी तुम्हें हम मर जा, कर दी है तू दस केड़ी, मैं ता खुशबू भी पुले आनी तेरी। आ जाए आपा मिलिए दोबारा, ख्वाहिश ये है आखरी मेरी।
रहना हमें याद करते कहा था, ये छोटा सा काम भी भूल गए, पहले को सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए।
हेलो दोस्तों, वेलकम इन योर शो गौदली, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपकी अपनी आरजे जिमी मौजूद है आपके अपने प्रोग्राम गौदली में, जिसमें आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं मिस सुमन मिश्रा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं एम्स इंटरनेशनल स्कूल की। और जैसे कि मैम ने कहा कि आजकल के बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव दिख रहा है, और उसका मैम मुझे रिजल्ट ये लगता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेशन का तो मायने पता है, एजुकेशन के जो महत्व हैं वो तो पता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो गांव को छोड़कर शहर की तरफ रवाना होने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को एक अच्छा बैकग्राउंड मिल पाए, अच्छी एजुकेशन मिल पाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाए। बट कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि वो इससे अपने उनको पेरेंट्स से दूर कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि फिर हमारे पिताजी उन बाबा की कितनी इज्जत करते थे, और हमें अब आगे अपने पिता के इज्जत करनी है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। आपने बहुत ही प्यारी बात कही, हम आपके शब्दों से फिर से इसको जानना चाहेंगे।
देखिए, क्या याद है कि हम गांव में थे और गांव से थोड़ा सा दूर निकले थे, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो दूसरा गांव पड़ रहा था। तो दूसरे गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग ये गलत, मतलब हमें जानकारी नहीं थी कि इधर जाना है कि नहीं जाना है, शायद सुरक्षित ना रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप फला के घर के हो, हमने पहले अपोज किया कि क्यों आप हमें रोक रहे हो यहाँ जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप फला के घर के हो, हमें पता है, और शाम को हम आकर के आपके पिताजी से और आपके भाई साहब से बात करेंगे। तो मुझे वो वाक्य आज भी याद है कि हमारे गांव से किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ लोग रहते हैं, वो हमको बाय फेस जान रहे हैं। क्या आज जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं उस मोहल्ले से 4 घर या 5 घर दूर के बच्चों को हम बाय फेस जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि शहरों में आना या शहरों में रहना या शहरों की शिक्षा, मुझे लगता है कि जो गांव है वहाँ से जो चीज़ें हमने सीखी है, हमने गांव में सुरक्षा महसूस किया है, हमने गांव में संस्कार को देखा है, हमने गांव में सभ्यता को देखा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शहर में इस चीज़ की कमी आज हम महसूस कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं महसूस करती हूँ कि मैंने जो चीज़ें गांव में, जो अच्छी, तमाम अच्छी चीज़ों को मैंने गांव में देखा है, वो मुझे शहरों में नहीं मिलती है। तो दुख भी होता है कि शहर का मतलब ये नहीं है कि हम गांव से दूर हो जाएं, अपने संस्कार से दूर हो जाएं, अपने जमीन से दूर हो जाएं, अपने जड़ से दूर हो जाएं। किसी भी वृक्ष का जो फल है, ग्रोथ है, पेड़ है, जो भी कुछ है, मुझे लगता है कि अगर वो जड़ से दूर हो जाएगा तो कहाँ से उस वो फलेगा फूलेगा। उसी तरीके से गांव है, गांव से हमें जुड़ना चाहिए। आज के बच्चों में जो कमियां आ रही हैं उसका कारण यही है कि हम पड़ोसी को ना जानते हैं ना पड़ोसी हमें जानता है। तो बच्चों में अगर कुछ कमियां दिख रही हैं, माँ बाप के पास मान लीजिए कोई चीज़ें छूट जा रही हैं, तो कोई बगल का व्यक्ति उसको समझाने और सुधारने वाला नहीं है। हमें लगता है कि जब तक बच्चा बहुत बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसको हर पल और हर पग पे किसी न किसी के सहारे की, समझाने की, सिखाने की, गुरु की कह लीजिए या साथी कह लीजिए, सबकी ज़रूरत हर पग पर उसको पड़ती है, जिनकी संख्या आज कम होती जा रही है, सिखाने और समझाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। यही कारण है कि संस्कारों की कमी आ रही है आज के बच्चों में।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और मुझे नहीं लगता है कि ये आज जो आपके एक आपका एक विचार है जो हमारे जितने भी लिसनर और जितने भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं वो भी इस बात को सोचने में मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि ये सोचने का विषय ही है। क्योंकि हम अपने बच्चों को आज इंग्लिश बोलना तो सिखा रहे हैं, क्लास में टॉप करना तो सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको नहीं पता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर आएंगे तो हमें उनका पैर छूना है, कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है अभाव देखा जा रहा है। बहुत ही प्यारी बात आपने कही। हम बढ़ते हैं मैम अब आपके करियर की तरफ। आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई?
मैं गोंडा की GGIC से मैंने अपना इंटर किया है, उसके बाद मैंने MLKPG कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है और BEd वगैरह किया, PG वगैरह किया यहीं से। उसके बाद विद्यालय के साथ जुड़ गए।
जी, ओके। तो ये रहा आपका करियर की शुरुआत। मैम, आपने एम्स इंटरनेशनल स्कूल की एज अ प्रिंसिपल के रूप में आपका चयन कब हुआ, या आपने उससे पहले उसमें एज अ टीचर काम किया, हमें वो सफ़र ज़रा बताएं।
विद्यालय को हम लोगों ने जो है शुरू किया था बहुत समय पहले ही, 2007 में विद्यालय को हम लोगों ने स्टार्ट किया। विद्यालय में हम लोग बतौर टीचर ही गए थे, टीचर के तौर पर हमने काम किया
जी।
और वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो है हम उन जिम्मेदारियों में, हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि हम और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं। आने वाले समय में हमको एक नाम और एक पद भी मिल गया
जी।
हमें लगता है कि अगर हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी के साथ हैं तो पद, नाम, ये सारी चीज़ें जो है हमें ऊपर वाला अपने आप दे देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति बहुत ही निष्ठावान होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस बात को जोड़ना चाहूँगी।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और बात करते हैं अब एम्स इंटरनेशनल स्कूल की, जिसमें आपने बताया कि आपने एज अ टीचर उसमें पहले काम किया। कोई प्रोफेशनल उसमें सब्जेक्ट था मैम जो आप पढ़ाती रही?
मेरा विषय मैथ रहा तो मैंने मैथ्स पढ़ाया।
ओके, सो क्योंकि मैथ में आपको बचपन से ही रुचि थी तो एज अ मैथ्स की टीचर ही उसमें आपका चयन हुआ। सो टीचर का जो एक सफर होता है और प्रिंसिपल की पोजीशन, दोनों ही पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है मैम। पहले हम सिर्फ बच्चों को लीड करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें पूरे एक स्कूल के मैनेजमेंट को लीड करना होता है। सो इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि धीरे धीरे कैसे आपने एज अ प्रिंसिपल के चेयर पे बैठने के बाद आपने किन किन चीज़ों को मतलब एज अ प्रॉब्लम फेस किया, आपको लगा कि ये एक प्रिंसिपल की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर एक प्रिंसिपल है तो उसको इतना पेशेंस होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को लीड करना चाहिए, लीडर की क्वालिटी आप में कहाँ से स्टार्ट हुई फिर?
देखिए जो परिवार का मुखिया होता है उसको किसी भी चीज़ को लेने के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं लगता है, उसको ये लगता है कि हर परिवार का सदस्य इस परिवार को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। उसी प्रकार विद्यालय हो या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में जो मुखिया का रोल होता है वो यही होता है कि सबके अंदर इस बात का एहसास वो उत्पन्न करे कि आप सभी के सहयोग के बिना कोई भी चीज़ें हो नहीं सकती हैं यहाँ पर। अगर हर व्यक्ति किसी भी संस्था का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही मायनों में निर्वाह करना शुरू कर दे तो बहुत आसानी से चीज़ें जो है वो चलने लगती हैं सही दिशा में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ऊपर वाले ने एक चाहे हुनर कह लीजिए चाहे स्वभाव कह लीजिए, ये था कि लोगों को जोड़ने का, लोगों के साथ मिलकर के काम करने का एक कला थी जिसको सभी लोगों ने सराहा और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के हमारे विद्यालय को आज एक जिले का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में हम अपनी संस्था को चला रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान रहा है सारी चीज़ें, सभी ने सहयोग किया इस वजह से।
जी ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने क्रेडिट का या यूँ कहूँ कि जब वो एक ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं तो उन लोगों को भी याद रखते हैं जो कहीं ना कहीं कल उनका सपोर्ट कर रहे थे या उनका साथ दे रहे थे। लेकिन आपके आवाज़ में आपकी बातों में ऐसा सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे पीछे इस पोजिशन पर आने पर भी बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। तो हम आते हैं एम्स इंटरनेशनल स्कूल में, मैम क्या क्या चीज़ें आपके जाने के बाद चेंजेस हुए उसमें, और जैसे कि 12th तक का वो स्कूल है तो उसमें कितने स्ट्रीम हैं और साथ ही साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आपका स्कूल क्या करता है, स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम खिलाए जाते हैं, और क्या स्पोर्ट्स में कभी इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर खिलाया है आपने, अपने बच्चों को भेजा है, इस बारे में प्लीज़ बताएँ।
देखिए विद्यालय हमारा फ़िलहाल CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है, इंटर तक की क्लासेस हम संचालित कर रहे हैं जिसमें सभी तीनों स्ट्रीम्स हैं, साइंस है हमारा, ह्यूमैनिटीज़ है और कॉमर्स है। साइंस में मैथ्स और बायो ही स्ट्रीम हम चला रहे हैं, सभी में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे यहाँ विद्यालय से प्रत्येक वर्ष 4 से 6 बच्चे 7 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, अच्छे अच्छे जो है यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे जो है वो दाखिला पा रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस उनको मिल रही हैं, उनकी रैंक बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स भी बच्चों ने हमारे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सिविल सर्विसेज है वहाँ से भी हमारे कुछ बच्चे जो है जल्द ही निकालेंगे, इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करेंगे। तो स्कूल हमारा जो है बहुत स्कूल हमारे इस विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही जो है अनुभवी हैं, मेहनती हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि विद्यालय आज जहाँ पर भी है हमारे टीचर्स के सहयोग के बिना वहाँ तक नहीं आ सकता था, हमारे सभी टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं। रही बात को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारा विद्यालय बहुत अच्छा दे रहा है। फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में हम बच्चों को योगा कराते हैं, स्पोर्ट्स जैसे है आपका बैडमिंटन हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छे से कराई जा रही हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा पार्ट हमारा डांस का आता है, हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन में हमारे यहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा उसको सराहा जाता है और सराहा है। तो हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, सभी में बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर के सहयोग के साथ।
जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि टीचर के सहयोग के साथ बच्चे सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम, कई स्कूल ऐसा भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर ले लेते हैं, तो उनका तो मोटिव सीधा सीधा ये होता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हम पढ़ा के, और फिर उसके बाद में फिर उनका जो कहीं ना कहीं बच्चों पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता होना चाहिए, या एक जो होता है ना कि टीचर अपना जी जान लगा देता है बच्चों के पीछे कि नहीं, हम, ये मेरा बच्चा है और मेरी जो कोशिश है सिर्फ पढ़ाना नहीं, अपने इस क्लास से इसको कुछ बना के निकालना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर उन टीचर्स में उसका अभाव दिखता है। उनको लगता है कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और मैं बस पढ़ा के निकलूं, यहाँ कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, नोट्स बनाए या ना बनाए, आई डोंट केयर। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जो 12th तक की एजुकेशन होती है उसमें टीचर का बहुत महत्व होता है, बहुत अभूतपूर्व योगदान होता है। तो ऐसे में अगर हम टीचर का चयन जो है एडहॉक बेसिस पर करेंगे या बाकी और माध्यमों से करेंगे तो वो सही नहीं होगा। टीचर का मतलब होता है कि सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों के साथ, जब वो घर भी जाता तो ये सोचता है कि आज इस बच्चे के साथ ये कमी रह गई, इस कमी को हमें कैसे दूर करना है, इस पर भी वो विचार करता और अगले दिन आकर के वो उस बच्चे की समस्या को सुनता, उसको हल करने का प्रयास करता है। ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें आप एक समयबद्ध तरीके से उसको लेकर के चले। यहाँ पर डिवोशन, निष्ठा और एक अपनत्व होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, टीचर का वही रोल हमारे यहाँ होता है कि वो अपना बच्चा मान करके हर बच्चे की परवरिश करे, हर बच्चे को पढ़ाए। पढ़ाना परवरिश से ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मुश्किल काम है। बच्चा कई बार होता है जिद करता है, मुझे ये चीज़ अभी नहीं सीखनी है, लेकिन हमें उसको बताना है कि नहीं, आपको इसी समय पर सीखनी है, इसके बाद का समय जो होगा वो आपके घर जाने का समय हो जाएगा। तो टीचर बांधता है अपने साथ, जोड़ता है अपने साथ, कनेक्ट अपने साथ करता है। तो वो क्वालिटीज़ हमें नहीं लगता है कि जिसकी विचारधारा ऐसी होगी कि अरे हमें तो बस पैसा कमाना है, हमें तो सैलरी से मतलब है और कुछ घंटे पढ़ा करके तो जाना है। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोफेशन के साथ ये चीज़ें कहीं चल पाती हैं। विचार पूरी तरीके से बहुत साफ रख कर के तब इंसान इस काम प्रोफेशन में आता है। हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं, हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएट हैं इस फील्ड में, वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो हमें इस एडहॉक की कभी खैर जरूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे लगता है कि वो चीज़ सही भी नहीं है।
जी, ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया और आपने बताया कि आपके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है और ये तरीका भी सही नहीं है। मैम, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि सपोज दैट हम अपनी ही जर्नी की अगर बात करें, जब हम अपने स्कूलिंग में थे और क्लासेस मुझे समझ में नहीं आती थी, तो कहीं ना कहीं बच्चा फिर अदर ट्यूशन की तरफ भागता है और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर भी नहीं होता है। सो आप एज अ एम्स इंटरनेशनल स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं, आपको क्या लगता है कि आपका एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि आप मैथ्स या आपका जो भी टीचर है वो मैथ को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाए कि हमें कहीं अदर ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी जाती हैं?
जी बिल्कुल। देखिए, विषय जो है वो चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, थोड़ा सा ऐसे विषय है जिसमें बच्चों की रुचि थोड़ा देर से आती है, लेकिन देर से आती है, क्योंकि शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें बच्चों को लगता है अरे ये कहाँ, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका चीज़ें होंगी। लेकिन तरीका होता है, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ में, मास्टर्स हासिल करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख करके आए होते हैं, तो वो सिखाना इतना मुश्किल नहीं होता है। बस अपने अंदर ये होना चाहिए, टीचर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं उस चीज़ को 4 बार 6 बार 10 बार सिखाने का प्रयास करूँगा। बच्चों को भी थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कोई भी काम हो बिना प्रयास के, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम नहीं होता। तो मैथ या बाकी विषय भी उसी प्रकार है, अगर हम किसी भी विषय को बार बार दोहराएंगे तो वो ज़रूर आएगा। उसके प्रति ये ना माने कि ये बहुत कठिन विषय है या कोचिंग ट्यूशन के बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती है। कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम
स्वयं में प्रयास करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अगर हम किसी विषय को अपने टीचर से पढ़ करके आए हैं और घर पे बैठ करके आधे घंटा एक घंटा उस चीज को दोहराएंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो चीज़ें हमें ज़रूर आना स्टार्ट होगी। इसलिए हम सभी बच्चों से हमारे यहाँ ये चीज़ें बताई जाती है, समझाई जाती हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज ही नहीं आगे भी सेल्फ स्टडी ही हमको जो है आगे लेकर के जा सकती है। इसलिए सेल्फ स्टडी पर फोकस करना हम लोग बच्चों को डे वन से ही सिखाते हैं। हमारे यहाँ क्लास फर्स्ट का बच्चा अगर वो टाइम टेबल से बैग नहीं रख पाता है तो हम उसको सिखाते हैं कि नहीं, आपको फर्स्ट से ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना बैग सेट करना है। तो
जी,
जब हम क्लास फर्स्ट से उन चीज़ों को सिखाते हैं कि आपको अपनी चीज़ें खुद से करनी है, आपकी जो अपनी समस्याएं हैं आपको समाधान करने का रास्ते ढूंढने हैं, कौन सी समस्या आपको अपनी माँ से पता चलेगी उसका समाधान निकलेगा, कौन पिताजी से, कौन स्कूल से, हर समस्याएं हर आप डिस्कस भी नहीं करते हो। इसलिए जैसी आपकी समस्या हो उस तरीके से आप अपने टीचर से, अपने बड़ों से डिस्कस करके उसको शॉर्ट आउट करिए। कोचिंग ट्यूशन मुझे लगता है कि बच्चों का समय खराब करता है। आने जाने में बच्चे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में देने के बाद जब घर जाते हैं फिर उनको एक बोझ रहता है कि अभी तो मुझे कोचिंग भी जाना है, तो वो उनका अपना समय भी नष्ट होता है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी, कोचिंग ट्यूशन से दूर रहें, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें और सभी विद्यालय को अपने बच्चों को विद्यालय के साथ जोड़ करके रखने का प्रयास ज़्यादा करना चाहिए।
जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में हमें ये बात बताई कि कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने जो भी बात कही उसको मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि जब बच्चे में कहीं ना कहीं सेल्फ जो एक हार्ड वर्क होता है, जब उसकी कहीं ना कहीं अभाव या कमी हो जाती है तब वो ट्यूशन का सहारा लेता है। और ट्यूशन में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे या आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ भी आपको गाइडेंस ही मिलेगी। हालांकि यहाँ पे स्कूल में आपको 6 घंटे की स्टडी मिलती थी, 1 घंटा आपको ट्यूशन में वो और पढ़ा देंगे, बट जब तक आप खुद नहीं कुछ करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में 6 घंटे समय देता है, हर विषय को पढ़ाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है, हिंदी का टीचर हिंदी और इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। फिर चंद मिनट के कोचिंग और ट्यूशन में जो 50 मिनट और 55 मिनट का होता है, एक टीचर बैठता है वो सारे विषय को कैसे पढ़ाता है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इसलिए मैं अपने बच्चों को कहूँगी कि कोचिंग ट्यूशन से वो दूर रहें, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो अपनी मेहनत से बच्चे सीखते हैं उनको रास्ता ढूंढना आ जाता है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो चलना सीख जाते हैं कि हाँ मुझे इस समस्या का समाधान ऐसे मिलेगा
जी।
और वो धीरे धीरे उनके जो विचार हैं उसको परिपक्व बनाते हैं। जब हम हर पल दूसरों का ही सहारा ढूंढेंगे तो खुद से चलना कब सीखेंगे
जी।
तो बच्चों का खुद से चलना और खुद से समस्याओं का समाधान ढूंढना थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ
जी
बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और अपनी आगे की वार्ता हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है तो हम एक प्यारे से गीत सुन लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सो माय लवली लिसनर, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
दीजिए अपने बच्चों के हौसलों को नई उड़ान और उनकी कल्पनाओं को सुनहरे रंग। Blended Learning, Beaming Future. For holistic development of your children, आपके बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर Sunbeam School. Facilities हैं GPS transportation, CCTV, CBSE curriculum, AI-based projects, proficient trainer and active learning. Excellent infrastructure, 20+ subjects available in class 11. Well-equipped lab of computer and sciences. Sports classes, Zumba, Yoga, Taekwondo and Spoken English. Admissions open. We help your children to shine. Pata hai Imarti Bisein, Behraich Road, opposite Royal Enfield Showroom, Gonda. Adhik jankari ke liye sampark karein 731-117-3003. 731-117-3004. www.sunbeamgonda.com.
देखो बेटा मून, और आज इसकी शेप है सेमी सर्कल।
पापा, इट्स अ क्रिसेंट। आजकल के बच्चे हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, इनका स्कूल भी ऐसा ही होना चाहिए जो इनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे।
इंट्रोड्यूसिंग स्कूल जस्ट लाइक यू, जयपुरिया स्कूल्स कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ सेठ एम आर जयपुरिया विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, लेबोरेटरीज इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट एंड हाई एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। जयपुरिया स्कूल्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.jaipuriaschool.ac.in।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6390427251 और 6390427253।
Everybody shake your hands, everybody out there are here. Hold your hands so close, so feel the love you will hold, so feel it higher now, feel the fire now. Everybody shake your hands, everybody out there are here. Hold your hands so close, so feel the love you will hold, so feel it higher now, feel the fire now. Everybody shake your hands, everybody out there, hold your hands up.
हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर शो गौधली, और मौजूद है आपकी अपनी आरजे जिमी। साथ ही साथ में हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, जिनसे ढेरों सारी वार्ता हमारी चल रही थी, मैं सुमन मिश्रा जी। और एक बार फिर से अपने लव लिसनर का बहुत बहुत स्वागत करती है आरजे जिमी। और चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मैम से ढेरों सारी बातें हो रही थी, जिसमें मैम ने हमें ये बताया था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो ट्यूशन की तरफ तब भागते हैं जब उनके अंदर सेल्फ स्टडी का अभाव दिखता है। तो मैम की बातें हमें बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मेरे जितने भी लिसनर आज सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो मैम, ये तो बात हुई ट्यूशन की, आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए? और कई बार हमारे साथ ही क्या होता है कि एक टॉपिक के बारे में हमें पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब डिलीवर करने की बात आती है तो हम कर नहीं पाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं टीचर के लिए एक अच्छा मैं ये कहूँ कि पॉइंट नहीं है। और क्लास को एक एंटरटेनमेंट भरा क्लास बना के बच्चों तक एक बात को पहुँचाना, ये भी आसान नहीं होता है। सो टीचर्स के अंदर अगर क्वालिटी की अगर हम बात करें कि किन किन क्वालिटीज पे ध्यान रख के टीचर्स को अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहिए कि क्लास वो बोरिंग भी ना बने, बच्चे को नींद भी ना आए, और बच्चा बहुत ही खेल कूद में, ये यूँ कहूँ कि बहुत ही इंटरटेनमेंट में, हंसी मजाक में उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को सीख ले।
देखिए, जैसा कि आपने कहा, हंसी मजाक में चीज़ों को सीख ले। देखिए, एजुकेशन बच्चों को वैसे ही टफ लगती है, लेकिन आज के समय में बहुत परिवर्तन जो है कम्युनिकेशन और बाकी जो सोर्सेस हैं इनके माध्यम से बहुत परिवर्तन एजुकेशन में भी हो चुका है। तो सीखने और सिखाने के लिए दोनों का इंटरेस्ट मायने रखता है। जहाँ तक बात टीचर की आती है, तो टीचर तभी टीचर बन पाता है जब उसका इंटरेस्ट अपने विषय को पढ़ाने का होता है। बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आता है, बहुत सारे चीज़ों को वो सीख करके तब वो आता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, फिर वो टीचर बनता है। तो टीचर पढ़ाने अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, व्यक्ति इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ टीचर से नहीं होता है, स्किल तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन अगर हमें 10 पॉइंट्स भी अगर आता है और 10 पॉइंट्स में हमको सिखाने की चाह है, तो हम 6-7 तो जरूर ही सिखा ले जाएंगे। लेकिन अगर सिखाने की चाह नहीं होती, हमने नॉलेज तो बहुत ज़्यादा एक्वायर किया है या सीखा है या अपने तक रखा है, और उसको पहुँचाने की चाहत नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति सफल टीचर तो नहीं बन सकता है। हम ही मानते हैं कि जितने भी टीचर होते हैं, वो अगर वो इस प्रोफेशन में आए हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, तो वो अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका वो प्रोफेशन नहीं होता, पैशन बन चुका होता है। अच्छे टीचर की यही क्वालिटी होती है, और जब कोई चीज़ हमारा पैशन बन जाता है, तो जब तक हम उसको पूरा कर नहीं लेते हैं, तब तक हम चैन से बैठते कहाँ हैं। तो हमें लगता है कि विद्यालय में जो हमारे यहाँ विद्यालय में जो टीचर हैं, वो लगभग अपनी बात को, अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को अपने बच्चों तक पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। और ऐसे ही नहीं, बच्चे इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हों, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम्स हों, चाहे एग्ज़ाम्स हों, तो टीचर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी टीचर व्यक्ति बनता है, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके आता ही आता है। तो हंसी मजाक में तो नहीं पढ़ाया जा सकता हर चीज़ को, लेकिन हाँ, क्लास डिपेंड करती है कि कौन सी क्लास है। अगर हम यही नर्सरी के जी को सिखाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हमें डांस के माध्यम से, राइम्स के माध्यम से, पोएम के माध्यम से अपनी चीज़ों को पहुंचानी होती है। लेकिन यही अगर हम इंटर की क्लासेस ले रहे होते हैं, तो हमें थोड़ी सी विषय की गंभीरता के साथ साथ उस विषय को सिखाने के लिए स्वभाव में और व्यवहार दोनों में परिवर्तन लाकर के उस चीज को सिखाया जा सकता है
जी।
तो उसी तरीके से सब चीजों को सिखाते हैं अपने बच्चों को।
मैम, कहीं ना कहीं हर एक कदम पे मोटिवेशन की भी जरूरत होती है बच्चों की। सपोज दैट हर बच्चा अगर स्कूल में आए और एजुकेट, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी फैमिली से परेशान होते हैं, कहीं डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, कहीं मेंटली किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। तो क्या आपका स्कूल या आपके टीचर्स बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, उनकी चीजों को जानने, या अगर वो फैमिली से कुछ रिलेटेड है तो उसको जान के सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं? या अगर मोटिवेशन की बात करें, सो हमने जितना देखा है हमारे स्कूल की कि मोटिवेशन की भी एक क्लास लगती थी, एक बाहर से टीचर बुलाए जाते थे, वो हमें हफ्ते में एक बार मोटिवेशन की क्लास लगती थी, वो हमें मोटिवेट करते थे अपने स्टडी को लेकर। तो इसके लिए आपका एम्स इंटरनेशनल स्कूल क्या करता है?
देखिए, वैसे तो वर्क ऑर्गेनाइज कराई जाती है टीचर्स की भी और बच्चों की भी, क्योंकि हमें मोटिवेशन, तो बिना मोटिवेशन के तो वास्तव में हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस फील्ड में तो मोटिवेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं भी होती है कई बार, अगर टीचर उनको ये चीज बताता है कि आपके लिए आज की क्लास कितना मायने रखती है, आपका इस विषय के साथ जुड़ा होना कितना मायने रखता है, आप इसके साथ जुड़ करके आप 4 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद बच्चे का मन जो है वो परिवर्तित होता है, वो उसके साथ जुड़ता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत तरीके के चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के अपने लेवल के चैलेंजेस होते हैं, वो हर छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है लेकिन बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। छोटी छोटी समस्याओं में उलझे होते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि उसको जाना जाए, समझा जाए, और उसको उससे उन्हीं को सिखाया जाता है कि इसको आपको निकलना कैसे है, क्योंकि अंततः जो है वो सारी चीजों को फेस तो बच्चों को ही करना है, हमारा काम है कि उनको मजबूत बनाना कि अगर समस्याएं आती हैं तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे। हम लोग सिखाते हैं कि अगर कोई समस्या आई है तो थोड़े दिन के लिए आप धैर्य के साथ बैठ जाइए, फिर रुक करके सोचिए कि इस चैलेंजेस को आप कैसे मीट आउट कर सकते हैं, किन किन लोगों को आपको आवश्यकता पड़ सकती है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, आप उन लोगों से बात कीजिए। कई बार बच्चे जो है अपनी समस्या को अपने पेरेंट्स नहीं कह पाते लेकिन अपने टीचर से कह ले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद टीचर जो है इसका बेहतर सलूशन दे पाएगा। माँ बाप से कई बार बच्चे डर जाते हैं या सोचते हैं कि अगर हम अपनी समस्याएं माँ बाप से बता देंगे तो दोबारा हमें उस जगह पर या उस दिशा में जाने नहीं देंगे। तो हम लोग खैर बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर के उनकी समस्याएं सुनते भी हैं और उससे उनको बाहर निकलना और उससे जो है दो चार होना सिखाते भी हैं।
जी मैम, अगर बात हो कि आपका स्कूल किन मायनों में और स्कूलों से अलग है तो आप इसके लिए एज अ प्रिंसिपल क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, मैं अलग तुम नहीं कहूँगी, हम सभी लोग जो है चीज़ों को सिखाते हैं, बच्चों को मजबूत बनाते हैं, सभी विद्यालय अपने स्तर से इस चीज़ को कर रहे हैं, हम भी उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं। बच्चों को हमें सिखाना है, संस्कार देना है, विषय को बताना है, वही हम भी कर रहे हैं। रह गई बात एजुकेशन के साथ साथ समाज की समस्या, क्योंकि अंत 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उनको आना समाज में ही है, तो हम लोग आज से ही अपने बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ करके चीजों को सीखना सिखा रहे हैं।
जी,
अप्लाइड नॉलेज के बिना जो है नॉलेज जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधूरा है। तो अप्लाइड हर चीज को जो है, अगर हमने सीखा किसी फॉर्मूले को तो उस फॉर्मूले को उठा करके हम अपने डेली लाइफ से, कि हमने अगर ये सामान परचेस किया तो इसको कैसे हमें कैलकुलेट करना, ठीक उसी प्रकार हम हर विषय को अपने डेली लाइफ के साथ, अपने समाज के साथ, अपने जीवन के साथ जोड़ करके अपने बच्चे को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं।
हमने भी मैम जब हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री में एक चीज ये होती है कि वो हमें इतने मुगल के जो जमाने के अकबर, बीरबल और शाहजहां, ये जो सारी चीज़ें थी हमें याद नहीं होती थी, तो उनकी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं जानने के लिए हम उसको अपने फादर से रिलेट कर लेते थे या अपने चाचा से रिलेट करके, तो वो इजी वे में हमें याद हो जाती थी। तो ये जो आपका तरीका मुझे आपने बताया कि आपका स्कूल इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है और इन्हीं मायने में आप अपने स्कूल को अलग कहती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैम, अगर बात करें कि बदलते वक्त को देखते हुए आप अपने आने वाले दिनों में अपने स्कूल में क्या बदलाव लाना चाहेंगी?
हम सबसे ज़्यादा फिलहाल काम करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे स्पोर्ट्स में कम से कम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जाएं। इस पर हम भविष्य में जो है कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पर थोड़ा सा काम करने की इच्छा है कि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ जो है अपने ज़िले का नाम जो है विश्व पटल पर भी लाने का प्रयास करेंगे।
ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात मैम आपने बताई और बिल्कुल हमें आपके कोशिश पे बिल्कुल भरोसा है कि आने वाले दिनों में एम्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करेंगे। मैम, बस हमारे पास, हम एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं, तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम अपने प्रोग्राम विराम देंगे। मेरा सवाल ये है कि अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस था एज अ प्रिंसिपल ऑफ एम्स इंटरनेशनल स्कूल, उसको बहुत छोटे शब्दों में बताइएगा।
देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है वो पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने इन्हीं से शुरू हुआ था और वही चीज़ें आज चल रही हैं। तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा तो मैंने अनुभव मुझे हासिल नहीं हुआ, अभी तो मैं खुद भी सीखने का ही प्रयास कर रही हूँ। बस ये है कि बच्चों को जितना हम समाज के साथ जोड़ करके उनको शिक्षित कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और एम्स को जो है हम चाहते हैं कि हर जिले में एम्स पहुंचे, क्योंकि एम्स उद्देश्य है वो अफोर्डेबल एजुकेशन और लोगों के साथ कनेक्ट हो करके संस्कार संस्कार डालने का प्रयास हमारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो अपने जड़ से और अपने परिवार से और बाकी चीज़ों से थोड़ा भी डिसकनेक्ट हों, इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होकर के ही वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और यही हमारा अनुभव रहा है, इसी विषय पर मैंने काम किया है और इसको आगे यूं ही बढ़ाते जाने का हमारा प्रयास है।
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है मैम। और क्योंकि एज अ वुमेन आप और लिए एज अ मोटिवेशन आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद थी, तो आप हमारे जितने भी बालिकाएं हैं उनको डेडिकेट करते हुए या उनको मोटिवेट करते हुए आप क्या कहना चाहेंगी कि एक जो स्त्री होती है उसका शिक्षित होना कितना ज़रूरी होता है?
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें कही हैं कि एजुकेशन सभी के लिए बहुत लगती है, महिलाओं के लिए विशेषकर, क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने से जैसा कि हम जानते हैं कि आदमियों की एजुकेशन, पुरुषों की एजुकेशन उन्हीं तक सीमित रह जाती है, लेकिन महिलाओं की एजुकेशन परिवार के हर सदस्य, हर वर्ग से और आसपास के लोगों तक पहुंचती है। इसलिए वुमेन्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। वुमेन के एजुकेटेड अगर वो नहीं होंगी तो हमें लगता है कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी शिक्षा से स्वाभाविक सी बात है दूर ही रहेंगी। इसलिए वुमेन का सिर्फ एजुकेटेड नहीं होना, एजुकेशन के साथ साथ उनको अपने बहुत सारे दायित्वों का निर्वाह करना होता है, जिसमें एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर परिवार में कोई नहीं है तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियां निर्वाह करती हैं, जैसे कि मार्केट से सामान भी लाना है, तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी कैसे वो चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगी? तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने बताई है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें महिलाओं का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है।
जी, बात करते हैं अगर हमारी रेडियो ज्ञानस्थली की, तो मैम आप अपने शब्दों में बताइए कि ज्ञानस्थली रेडियो गोंडा का ये जो FM है ये कल या आज क्या बदलाव ला रहा है गोंडा में?
मुझे लगता है कि इससे पहले मुझे जानकारी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि रेडियो स्टेशन हमारे इतने छोटे से ज़िले में काम कर रहा है और एफएम से हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की बात हमारे समाज के लोगों तक, हमारे गोंडा के सभी व्यक्तियों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, तो उससे लोग चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ने का, सुनने का, सीखने का प्रयास करते हैं। और इस दिशा में आपका ज्ञानस्थली जो रेडियो ज्ञानस्थली है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैंने भी सुना है हमारे ज़िले के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने सुना है, उससे हमको भी प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की और अच्छा करने की, क्योंकि अच्छा करने की कोई सीमा नहीं होती है। उसमें ज्ञानस्थली जो है, रेडियो ज्ञानस्थली गोंडा बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रहा है।
जी थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच आपका कि आप हमारे आज स्टूडियो में पधारी और ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन से आपने हमारे लिसनर को आगाह किया और नवाजा। थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू। सो लिसनर, आपको हम एक बार आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे बीच आज आपके अपने इस प्रोग्राम में मिस सुमन मिश्रा जी मौजूद थी, जो कि प्रिंसिपल हैं एम्स इंटरनेशनल स्कूल की, और ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन मैम से हमें मिली है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये प्रोग्राम सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा, आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। माय लवली लिसनर, मिलते हैं कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टीट्यून विद ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
रोजवुड इंटर कॉलेज, द गेटवे ऑफ इनोवेशंस, प्ले ग्रुप से क्लास 12, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम, क्लास 9 से 12, UP बोर्ड हिंदी मीडियम, एडमिशंस ओपन।
Salient features are smart classes and CCTV, GPS and transportation, computer and science labs, sports classes, dance classes, music classes, Zumba, Taekwondo and aerobics. Pata hai near Forest Office, Lucknow Road, Gonda. Sampark karein 8085880838 or 8085880809.
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए। आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9936193000 9936193000।
रस्ते देखे गलियों चौबारों में, बातें करके तुमसे इशारों में, को भी जाना मुझसे प्यार हो जाएगा। इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा, इस तरह ना देखो यारा प्यार हो जाएगा। मेरे रब्बा मेरे